सामने ईश्वर प्राप्ति कैसे हो ये रखा जाएगा। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं का स्वाध्याय करते हैं तो स्वाभाविक रूप में इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है कि क्या उस ईश्वर को पाना संभव है, क्या उस ईश्वर को जिसकी इतनी चर्चा सुनते हैं, जितना महत्व तो सुनते हैं, क्या मैं भी उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसको प्राप्त किया कैसे जाए, ये विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन हमने यदि ध्यान देकर सुना तो समझ में जरूर आ जाएगा कि यदि मैं प्राप्त करना चाहूं तो मैं भी उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। सबसे पहले मैं समता विलास ग्रंथ का एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिसमें उस ईश्वर की प्राप्ति के बारे में गुरुदेव ने बताया है। वो कहते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना। उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना। परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन भाव से सिमरण करना और संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना। लोक सेवा को धारण करना। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि एकाग्र होकर अंतर विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। वो प्रभु शब्द रूप परमेश्वर के रूप में इस शरीर के अंदर स्वयं विराजमान है। उनका ज्ञान न होने के कारण मैं उनसे भेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए वचन यह सबसे पहला मार्गदर्शन क्या कर रहा है, कहते हैं कि उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यही है, सारे साधनों का सार यही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना। तो सबसे पहली जो जरूरत है इसके लिए, सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, इस बात को समझने की जरूरत है। इसी के लिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सतसंग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह ना भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो ही ना दृढ़ अनुराग। कि जब तक मनुष्य सत्संग का श्रवण नहीं करेगा उसकी बुद्धि में से मोह खत्म नहीं होगा, और जब तक मोह खत्म नहीं होगा उसका प्रभु चरणों में अनुराग ही नहीं होगा। फिर वो क्यों प्रभु को याद करने की कोशिश करेगा, क्यों प्रभु को खोजने की कोशिश करेगा। तो इसी के लिए वचन करा है कि सद विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। निर्मल करने का मतलब यह है कि उस मोह का त्याग करना। वो मोह क्या है, कि मैं शरीर हूं, मेरा ये विशेष रूप है, मेरी लंबाई मुझको पता है, मुझको अपना वजन पता है। हर व्यक्ति अपने नाम रूप को ही, अर्थात अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, इससे कोई बचा हुआ नहीं। और इस शरीर के अंदर जो मन और इंद्रियां हैं, तो जीव इन मन इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर द्वारा संसार का भोग करता है। इसीलिए ये शरीर और संसार को सत्य समझता है और इसको सुख का कारण समझता है। यह हर व्यक्ति की स्थिति है। ये कहते हैं कि मोह है, इसी को भ्रम भी कहा गया। यह अशुद्ध बुद्धि है, इस बुद्धि को हमने निर्मल करना है। अब यह निर्मल कैसे होगा? जब सही ज्ञान होगा तभी बुद्धि निर्मल होगी। तो जो हमने समझ रखा है पहले वो तो देखें कि वो कहां तक ठीक है। अब यदि हम जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये संसार देखने में परम सुख रूप प्रतीत होता है। ये संसार देखने में परम सुख रूप प्रतीत होता है, परंतु अंदर से विष रूप है। और इसका प्रमाण यदि हम एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहें पहले, तो देखो हर व्यक्ति को यह शरीर सुंदर प्रतीत होता है, इसलिए शीशे में बार बार दिखता है, चाहे बूढ़ा हो क्यों ना हो, चाहे काला भी क्यों ना हो, लेकिन अपने रूप को शीशे में वो भी निहारेगा। लेकिन जो रूप है इस शरीर का, आप जरा विचार करके तो देखो कि मैं सारे शरीर को रूपवान समझता हूं, लेकिन इस शरीर का यदि विश्लेषण किया जाए तो आपको पता लगेगा इस शरीर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। खून यदि निकल जाए शरीर का, देखने में गंदा लगता है वो। मांस शरीर का अंदर से दिखाई पड़ने लगे वो गंदा लगता है। मल मूत्र पसीना हर चीज तो सी गंदी है, जो भी इससे बाहर निकलती है शरीर से हर चीज गंदी है। और जो बाहर की खाल आपको नजर आती है, गोरे काले नजर आते हैं, इसकी मोटाई नापे देखो, मोटाई कुछ है ही नहीं इसकी। सारे शरीर की स्किन उतार कर यदि हाथ में ली जाए तो एक नन्ही सी चुटकी में सारी स्किन आ जाएगी। उसको उतार दिया जाए तो आपके शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहेगा, आप खुद भी देखना नहीं चाहोगे इसको। तो कहां है इसके अंदर खूबसूरती? एक भ्रम बना हुआ है कि मैं बड़ा सुंदर हूं। तो जिस प्रकार से शरीर का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि यहां गंदगी और बदसूरती के अलावा है ही कुछ नहीं, उसी प्रकार संसार में भी जब ठीक ठीक इसका विश्लेषण करोगे, जैसे कि वाणी पहले आपने सुनी थी, जब से जीव गर्भ में आया मरण काल तक रहे भरमाया, कि जब से जीव गर्भ में आता है और जब तक ये मरता है तब तक ये दुखी संसार में भोगता है, इससे कोई बचा नहीं। मनुष्य जीना चाहता है लेकिन जीवन इससे छीन लिया जाता है, इसके जीवन का परिणाम मौत है। हर व्यक्ति जीना चाहता है तो संसार में जीकर मुझको जीवन भी नहीं मिला, मौत मिली। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए जवान रहना चाहता है लेकिन प्रकृति इसको बुढ़ापे मिला के खड़ा कर देती है। सारे जीवन के सुख उसके दुख में बदल जाते हैं, सुख होते हुए दुख में बदल जाते हैं। तो और मनुष्य जो है इस भ्रम के कारण दुख उठाता है कि मैं शरीर हूं, जबकि सत्य यह है कि जीव इस शरीर के अंदर रहता है। समझने की बात यह है, अर्जुन जैसा विद्वान भी, अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी इस भ्रम में आ गया। युद्ध भूमि में उसने गांडीव रख दिया, कृष्ण उसके साथ खड़े हुए हैं। अब वो जब उसको मोह हो गया, उन्होंने कहा अरे ये जितने भी हमारे संगी साथी हैं ये सब जो हैं वो मारे जाएंगे, तो कृष्ण ने फिर उसके मोह को दूर करने की कोशिश की ज्ञान के द्वारा। तो देखो वो क्या कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधनानी एव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। तुझे यह सोच रहा है कि युद्ध में ये सब मर जाएंगे, जबकि सत्य यह है इन जीवों के बारे में, इनमें से कोई भी नहीं मरेगा, शरीर इनका नष्ट होगा, जीव जिंदा बच जाएगा, फिर पुनः उसको अपनी वासना अनुसार नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं फिर कौन हूं, शरीर तो मेरा भी जाएगा, मुझको मालूम है। तो जब तक मैं अपने आप को शरीर समझता रहूंगा, मुझको मौत का सामना करना पड़ेगा, संसार के दुख सहन करना पड़ेंगे, बुढ़ापे का दर्द भी मुझको सहन करना पड़ेगा। संसार को मैं अपना बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जिसको मैं अपना ना बनाता हूं, मेरी दोस्ती से मेरे पड़ोसी जलने लगते हैं। जितना भी आप संसार में संबंध बनाइए, हर संबंध में विरोधाभास आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। कुछ भी संसार में प्राप्त कर लिए, आपको संतोष नहीं हो सकता, ये सारे प्रकृति का विधान है। तो इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो गीता है या वो रामायण है या ये ग्रंथ है, ये सब हमको सबसे पहले अपने स्वरूप के बारे में समझाते हैं कि तुम कौन हो, पहले ये जानने की कोशिश करो। ईश्वर भक्ति तो बाद में होगी। शरीर परिवर्तनशील वस्तु है, हम सब जानते हैं, और जानते हुए भी गलती करते हैं। तो जितनी भी अध्यात्म विद्या है, वो इस बुद्धि को या इस जीव को इस शरीर से पहले अलग करने की कोशिश करती है, उसके बाद ईश्वर भक्ति सिखाती है। इसीलिए गीता में आया, बड़ा स्पष्ट देखिए, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तुसः। देखिए हमारे शरीर का विश्लेषण इस गीता में किया गया, तीसरे अध्याय में कहते हैं कि इस शरीर से सूक्ष्म और श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ मन है। कहते मन साहतु परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म बुद्धि है। या बुद्धे परता तुसा, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म वो ईश्वर स्वयं है। और ये सब इस शरीर के अंदर ही है। देखो इंद्रियां भी शरीर के अंदर है, मन भी इस शरीर के अंदर है, बुद्धि अर्थात जीव भी शरीर के अंदर है, और प्रभु अर्थात जीवन सत्ता जो जान है शरीर की, वो भी शरीर के अंदर ही है। लेकिन हमको किसी का कुछ पता नहीं है, हम अपने आप को केवल शरीर समझकर जीते चले आ रहे हैं। इसका भी ख्याल नहीं है ये जीवन मुझसे छीनने वाला है। जिसकी दौलत को पता हो कि डकैत लेने वाले हैं, डिक्लेयर कर दे पहले से कि मैं तुम्हारे घर डकैती डालूंगा, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, पूरी ताकत लगा देगा मैं कैसे इस संपत्ति को बचाऊं, क्योंकि डकैतों की चिट्ठी आ गई है, ये संपत्ति वो छीन के ले ही जाएंगे। ईश्वर बार बार आपसे कह रहा है कि मौत जीवन का सत्य है, और हम रात दिन दूसरों को देख भी रहे हैं, फिर भी हमको कोई फिक्र नहीं है कि इस मौत के मुंह से मैं कैसे बच सकता हूं। जीवन की संपत्ति तो तेरा जीवन है ना, ये सारी संपत्ति तुझसे छीनने वाली है, तुझको होश ही नहीं आ रही है कि इस मौत से बचने का उपाय मैं क्यों नहीं करता। तो सत्पुरुष इसीलिए ये सारा विज्ञान समझा रहे हैं, गीता में सारी बातें क्यों आ रही है, देखिए वाणी में भी आता है इसी बात के लिए, तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। कि इस तन से जो सूक्ष्म है वो इंद्रियां हैं, लेकिन उसको विकार करके इंद्री विकार, जितना भी इंद्रियों का व्यापार है, आपकी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इनका सारा व्यापार पांच विकार के अंतर्गत होता है, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। और इन इंद्रियों को जो आज्ञा देता है, जो सैंक्शन करता है मन, तो वो भी विकारों का ही पोषण करता है। इसीलिए मन के अंदर जितनी भी संसारी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं उठती हैं, हर इच्छा उसके पतन का कारण बनती है। तो मन के अधीन जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन जो शरीर है, ये सारा का सारा मनुष्य के पतन का कारण बनता है, मनुष्य के दुख का कारण बनता है। यही कारण है कि संसार में कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, आपका दुख, आपके मन का असंतोष खत्म नहीं होता, आपके अंदर भय बना रहता है, आप कभी भी निश्चिंत नहीं होते। तो सारे शास्त्र एक अन्य चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन से परे बुद्ध ठहराइए, कि मन के पीछे बुद्धि है। बुद्धि मन की हरकत को समझ सकती है यदि कोशिश करे तो। आपके मन में कोई इच्छा होती है, आपके सामने ग्राहक खड़ा हुआ है दुकान पर, कोई सीधा साधा है, गांव वाला है ये, आपके मन में कोई बात नहीं है, इससे 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट ले लूंगा, इसको तो पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आप जानते जरूर हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, मन के अंदर इच्छा उठ रही है कि मैं से ज्यादा प्रॉफिट ले लूं, कुछ मजा आएगा, लेकिन बुद्धि जानती है कि ये काम गलत है। तो बुद्धि की, जिसकी बुद्धि गफलत में है, जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं है, जिसकी बुद्धि में मोह है, वो गलत निर्णय ले लेती है, और उसकी जैसे ही सैंक्शन मिलती है, मन जो है वो आज्ञा देता है इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा आप कर्म करना वैसा ही शुरू कर देते हैं। तो इस बुद्धि को शुद्ध करना है, और बुद्धि की शुद्धता का मतलब, निर्मल करने का मतलब, कि बुद्धि के निश्चय को पहले बदलना है। वो निश्चय क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं। बुद्धि 3 काल इस शरीर से अलग है। यदि यह अलग नहीं होती तो विचार करो, मरने के बाद जितना हम कर्मकांड करते हैं, ये सारा कर्मकांड एक ही चीज को सिखाता है आपको कि जीव की अभी मृत्यु नहीं है, जीव बच गया है, तभी तो उसकी मोक्ष की तैयारी करते हो, तभी तो उसके लिए आप श्राद्ध करते हो कि कहीं ना कहीं तो वो है भी, हमारा माता है, हमारी पिता है, हमारा बाबा है, हमारे बुजुर्ग अभी हैं। ये सारा कर्मकांड आपको इस निश्चय की ओर ले जाता है, और कर्मकांड का कोई लाभ नहीं। सारे कर्मकांड का केवल एक लाभ है कि आपकी बुद्धि के अंदर ये निश्चय पैदा करता है कि जो जीव, जिसका शरीर तुमने अपने हाथों से जला दिया, लेकिन उस जीव की मृत्यु नहीं है, वो कहीं ना कहीं है जरूर, क्योंकि हमने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, हमको कैसे पता लगे कि वो जीव कहां है। हम सारी जिंदगी भ्रम में गुजार देते हैं। तो सारे शास्त्र हमारी आंखें खोलते हैं कि वो जीव अपनी ही आखिरी वासना के अनुसार नए शरीर में प्रवेश कर गया, वो अब नए शरीर में, नए संसार में रह रहा है, तेरा उससे नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब तू उनका श्राद्ध कर चाहे ना कर, उस जीव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद सोच लो कि आप आज इस चोले में हो, पिछले जन्म में भी मान लिया आप मनुष्य हो, वहां भी आपके बेटी पोते होंगे, रहे होंगे, वो कुछ कर्मकांड कर रहे होंगे, तो आप पे क्या असर पड़ता है उसका। शास्त्र तो यही बताते ना कि इस जन्म में जो कुछ भी कर्म करोगे उसके हिसाब से तुमको कर्म फल मिलेगा। हमारा किसी से कोई वास्ता है आज क्या? तो इसी प्रकार सब वो लोग हैं जो हमसे विदा हो गए। तो हमने ख्याल ये करना है, सीखना इस बात से ये है कि सारे शास्त्र कहते हैं कि मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। सीखना यह है कि जिस प्रकार मन के पीछे मैं खुद खड़ा हुआ हूं, मैं अपने मन की गति, हर गति को समझ रहा हूं, देख रहा हूं। आपको यदि 5 मिनट बिठा दिया जाए आंख बंद करके, आपसे कहा जाए कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो 5 मिनट बाद ही आपसे पूछा जाए, कहो भाई जाप हुआ क्या? तो कहोगे हां जाप तो हुआ, लेकिन साथ में कई विचार भी आते रहे। और 5 मिनट का लिखा जोखा तो आप बता भी सकते हो कि कौन कौन सा विचार आपके मन में उस समय आया। इसका मतलब आप वही तो होना जो मन की गति को देख रहा है, जो मन की गति को जान रहा है। और जिसको मैं जान रहा हूं वो चीज तो मेरी तो हो सकती है लेकिन होती मुझसे अलग है। तो जो जीव मन की गति को देख रहा है तो देखने वाला तो मैं हुआ ना, और जो वस्तु देख रहा हूं वो वस्तु मेरी तो है लेकिन है वो मुझसे अलग। तो ये जीव इस मन के ऊपर इसका निवास है। इसी को वाणी कह रही है कि मन से परे बुद्ध ठहराई, मन सा तू परा बुद्धि, जिसको गीता कह रही है। अब बताइए, मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, अब सोचने में पता लग रहा है कि मैं तो मन से भी ऊपर हूं क्योंकि मैं मन की गति को भी जानता हूं लेकिन आगे मैं नहीं जानता। तो आगे शास्त्र क्या कह रहे हैं कि बुद्धि परे रतन सुखदाई। जिस प्रकार मन के पीछे तू खुद खड़ा हुआ है उसी प्रकार तेरे पीछे वो परमात्मा, जिसको शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं, जिसको नाद कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं, वो इस बुद्धि के पीछे स्वयं खड़ा हुआ है। और उसी के कारण यह शरीर के अंदर जान है, वो जान रूप में रोम रोम में तेरे अंदर विद्यमान है, जिसको कहते हैं कि रोम रोम में रमत स्वामी राम नाम भज अंतर्यामी। वो राम है तेरे रोम रोम में रमा हुआ है, ना कि बाहर शरीर रूप में राम है। बुद्धि उसको जान सकती है, जिस प्रकार ये मन की गति को जानती है उसी प्रकार ये ईश्वर को भी जान सकती है। यदि इसके अंदर विश्वास आ जाए कि ईश्वर उसी प्रकार मेरे संग है जिस प्रकार मन मेरे संग है, तो ये जो निश्चय जब बुद्धि में आता है, इसके लिए ये बात आई कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। तो ये विचार सुन रहे हैं, यही सत विचार है। और निर्मल करना क्या है कि बुद्धि का ये निश्चय बदलना कि मैं शरीर हूं। तो सबसे पहले बुद्धि का ये निश्चय बदलता है, तब वो व्यक्ति, या यूं कहिए कि जो बुद्धि है वो ईश्वर पर विश्वास करती है, ईश्वर को अपने जीवन का स्रोत समझती है। इसीलिए रामायण का प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि भक्ति का जो पहला है वो सत्संग का श्रवण है और संतों का या अवतारों का जीवन लीला के बारे में सुनना है, क्योंकि उनके जीवन को सुनकर पढ़कर ही बुद्धि के अंदर विश्वास आता है कि ईश्वर मेरे अंदर ही मौजूद है, मेरे संग ही निवास कर रहा है। अब देखिए महात्मा मंगतराम जी की वाणी जो सुन रहे हैं हम, विचार करके देखो जरा कि 8वीं क्लास पास विद्यार्थी उसमें कितना ज्ञान होता है, लेकिन वाणी ये प्रकट हो रही है। सारा ये ज्ञान जो गीता में आपके सामने आया, ये वाणी भी बयान कर रही है इसको, ये सारा ज्ञान बिना पढ़ा लिखे ये कहां से आ गया? बुद्धि के पीछे यदि कोई है ही नहीं तो ये ज्ञान आ कहां से गया? ये हर व्यक्ति के विचार करने की चीज है। संतों का संग करने के लिए इसलिए कहा जाता है, उनके शास्त्रों का सत्संग सुनने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसको सुनकर ही, उनके जीवन को देखकर ही आप अंदर विश्वास आएगा कि नहीं, इस शरीर के अंदर वो सत्ता मौजूद है जो असंभव को भी संभव करके दिखा देती है। महात्मा मंगतराम जी के जीवन का यदि उनके खुराक देखी जाए तो 20 वर्ष तो उन्होंने केवल एक बार केवल चाय का सेवन करते थे 24 घंटे में, उस पर उनका 20 वर्ष जीवन चलता रहा। और पानी पीने का यह हाल था कि साल में एक या दो बार, वो भी शरीर में कभी रोग होता था तब वो 2-1 घूंट पानी पिया करते थे बस, जितना पानी चाय के संग आ गया बस उतना ही उनका वो था, उसके अलावा पानी भी वो नहीं पीते। सारी रात वो सोते ही नहीं थे, पूरी रात या तो उनके जंगलों में कटती थी या कभी घर में भी कटी उनकी बचपन में, तब भी वो रात भर जागते रहते थे। और यह हालत उनकी 3 वर्ष की आयु से थी। मां जब उनको देखती थी कि मंगत तू क्यों बैठा है, क्या डर गया है, कहते नहीं मां, फिर लेट जाते थे। और 9 वर्ष की आयु में घर छोड़कर पीर ख्वाजा के जंगल में जाना शुरू कर दिया था और सारी रात जंगल में बिताते थे। और 13 वर्ष की आयु में उस बालक के अंदर यह महामंत्र प्रकट हो गया था जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब विचार करके तो देखो जरा, इस शरीर के अंदर यदि ईश्वर सत्ता नहीं है तो वो अनोखा शरीर क्या कर रहा है। तो संत के जीवन को जब तक आप देखोगे नहीं, उसके बारे में चर्चा सुनोगे नहीं, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर कैसे विश्वास आएगा कि बुद्धि का मालिक ईश्वर इस बुद्धि के पीछे खुद बैठा हुआ है। इसीलिए तो ये जीव फिर डरता है पाप करने से, कि पाप की सजा तो दुख है, यदि मैंने छुपके भी कर लिया तो वो सजा मुझको भोगनी पड़ेगी, दुनिया कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो सबसे पहला इस बुद्धि के अंदर ये विश्वास आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां मेरी हैं, शरीर मेरा है, मन मेरा है, लेकिन ये मेरी हैं, ये वस्तुएं हैं, ये मैं ये नहीं हूं, मैं इनका मालिक हूं, जिसको हम जीव कह रहे हैं, जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं, जो निर्णय लेने वाली सत्ता है, जो होश में है, जिसको मन शरीर इंद्रियों का होश है, वो मैं हूं। लेकिन मेरे बारे में भी जिसको होश है उसका नाम ईश्वर है। मेरा यदि ईश्वर को होश नहीं होता तो मैं ईश्वर की भक्ति करता तो मेरी बुद्धि कैसे तीव्र होती, कैसे तीव्र होती, ये शास्त्र कैसे रचे जाते, ये तो किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाए जाते, किसी संसार की यूनिवर्सिटी में शास्त्रों की रचना करना पढ़ाया जाता है क्या, कभी आपने सुना है? लेकिन सारे शास्त्रों की रचना ज्यादातर जंगलों में बैठ के ही हुई है, जहां कोई यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं होता। तो ईश्वर इस बुद्धि का मालिक है, जो बुद्धि भी ईश्वर के प्रायण होगी उसके अंदर ईश्वर का सारा ज्ञान अवतरित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान रूप है, उसके अंदर ईश्वर का सारा आनंद अवतरित हो जाता है, ईश्वर आनंद रूप है। इसलिए महाराज जी की 13 वर्ष की आयु में समाधि लग जाती थी। समाधि का मतलब होता है ना इंद्रियों का होश है, ना मन का कोई होश है, ना शरीर का कोई होश है, ना संसार का कोई होश है, फिर भी ऐसी मस्ती है कि आंख खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। सारी रात निकल जा रही है, कोई होश ही नहीं है संसार का। तो अंदर ये जो आनंद का सागर ना उमड़ता हो तो बुद्धि कैसे उसमें लीन रहेगी। तो सत्पुरुषों का ये जीवन हमको बताता है और इस बुद्धि को शुद्ध करता है, बुद्धि को निर्मल करता है, अर्थात इस बुद्धि के निश्चय को बदलता है। क्या निश्चय? कि तू शरीर नहीं है, तेरा असली मालिक, असली जीवन ईश्वर में निहित है। जान तेरी जो है शरीर के अंदर वो ईश्वर है, तो तूने संबंध स्थापित उस ईश्वर से करना है। यदि तू अपनी मौत का इलाज चाहता है तो, जीवन के दुखों का इलाज चाहता है तो, इसीलिए जिस बुद्धि में यह निश्चय आ जाता है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर मेरा मालिक है और शरीर के अंदर ही मेरे संगी रह रहा है वो, और जिसके बुद्धि के अंदर यह निश्चय आता है कि शरीर मैं नहीं हूं, वो बुद्धि पवित्र कहलाती है। उस पवित्र बुद्धि के लिए ये वाणी कह रही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना। ऐसी बुद्धि ही असत माया के, असत कहते हैं जो चीज नष्ट होने वाली है, नाश होने वाली। तो जो कुछ भी हमारे अनुभव में, हर चीज नाश होने वाली है, मैं मेरे शरीर के, इसलिए इसको असत करके कहा जाता है। तो असत माया के भोगों से उपरस होना, ये साथ दूसरा काम होता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो जिस बुद्धि में यह निश्चय आ जाएगा उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो संसार के भोगों से हटने की कोशिश करेगी। उसके आगे की जो प्लानिंग होगी, आगे की जो योजना होगी उसकी ये होगी कि मैं किस प्रकार से अपना वक्त बचाऊं, जो संसार में पैसा कमाने में लगा रहा था, किस प्रकार से अपने शरीर को सुरक्षित रखूं, जो संसार के भोग भोग कर मैं इसको बीमार कर रहा था। वो संसार के भोगों से बचने की कोशिश करेगा, उसको दिखाई पड़ने लगेगा कि मानसिक बेचैनी का कारण संसार का भोग विलास है। तो ऐसे जीव को फिर तीसरी बात कही जाती है कि वो कहते हैं कि परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन्य भाव से स्मरण करना और संसारी पदार्थों से वैराग्य बांध लेना। तब कहते हैं कि बुद्धि एकाग्र होकर अंतर विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। अब अंतिम बात आती है ईश्वर के स्मरण की। जितने भी शास्त्र हैं वो सही पूजा पद्धति सिखाते हैं, परंतु हम लोगों ने जो पूजा पद्धति अपना रखी है वो शास्त्रीय नहीं है। गीता उसको कहीं कंफर्म नहीं करती, जितने भी संत हुए उनकी वाणी उसको कंफर्म नहीं करती, उसकी पुष्टि नहीं करती। तो पूजा का सही स्वरूप क्या है, जब तक वो हम नहीं अपनाएंगे हम इस शरीर के अंदर ईश्वर दर्शन करने में समर्थ या सफल नहीं हो सकते। यदि ईश्वर दर्शन जब पता लग गया कि ईश्वर इस शरीर के अंदर मौजूद है तो उपासना बाहर फिर कैसे हो सकती है। शरीर तेरा रूप नहीं है, शरीर तू नहीं है, तो बताओ जब तू ही शरीर नहीं है तो ईश्वर शरीर कैसे हो सकता है। ईश्वर शरीर रूप में अवतार तो ले सकता है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन ईश्वर खुद शरीर नहीं होता। शरीर उसका भी परिवर्तनशील है। राम का शरीर नष्ट हो गया, कृष्ण का शरीर नष्ट हो गया, महात्मा मंगतराम जी का शरीर नष्ट हो गया, जितने भी संत आए अवतार आए सबका शरीर खत्म हो गया। ईश्वर शब्द रूप परमेश्वर है जो घटघट व्यापक है, उसकी उपासना अंदर ही संभव है। इसीलिए मनुस्मृति से देखो चलाया वो क्या कहते हैं कि व्यधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभी गुणे उपांशु स्याच्छत गुणा साहस्रो मानसा स्मृता। सबसे पुरानी स्मृति है भारतवर्ष। तो भगवान मनु क्या कह रहे हैं, कहते हैं विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभी गुणे, कि जो कर्म कांड हम करते हैं कर्म कांड के द्वारा जो बाहरी पूजा करते हैं, इससे कहते हैं कि जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। जप होता है मंत्र का, तो पूजा की जो सही पद्धति है वो मंत्र का जाप। तो सबसे श्रेष्ठ ईश्वर की उपासना क्या हुई कि मौन होकर सिद्ध मंत्र का जाप करना। मंत्र भी कोई नहीं जो मन चाहा जाप कर लिया। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि मंत्र खुद ईश्वर का अवतार होता है, याद रखिए, वो खुद परमेश्वर होता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में या वेद में कि नाम ब्रह्मेति उपासते, कि नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। जिस प्रकार शरीर रूप में यदि गुरु हमको मिल जाए जो वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो, तो उस गुरु को मैं शरीर के हम ईश्वर समझते हैं, इंसान तो नहीं समझते उसको, उसको वही दर्जा देते हैं जो ईश्वर का है। तो जिस प्रकार ईश्वर ने संत के रूप में अवतार लिया है धरती पर और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आया है, उसी प्रकार उस ईश्वर ने मंत्र रूप में अवतार लिया है जो इस बुद्धि को अपने से मिलाने के लिए लाया है, अपना दर्शन करवाने के लिए लाया है। इसलिए जब तक उनके बताए अनुसार हम नहीं करेंगे हमको ईश्वर दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव के, देखिए ईश्वर की रचना क्या होती है, गुरुदेव के 13 वर्ष की आयु में यह महामंत्र प्रकट हुआ था, उस समाधि की हालत में। समाधि तब लगती है जब जीव का संबंध शरीर इंद्रियां और मन से पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह जीव पूरी तरह से ईश्वर में जब लीन हो जाता है उस हालत को समाधि कहते हैं। उस नाद रूप परमेश्वर के अलावा वो कुछ अनुभव नहीं करता। उस हालत में ये मंत्र अवतरित हो रहा है। पहले दिन उनको अक्षर हुआ था ओम ब्रह्म सत्यम, ये अक्षर उनको अनुभव अंदर हुए थे। दूसरे दिन उनको अनुभव हुआ था निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा। तीसरे दिन उनका अनुभव हुआ सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। तीन दिन में ये मंत्र जो है संसार में अवतरित हुआ जीव कल्याण के लिए। गुरु को मंत्र की जरूरत नहीं होती, क्यों प्रकट हुआ वो? समाधि में कोई विचार भी नहीं होता, वहां पर विचार करना संभव ही नहीं है। जीव की कोई इच्छा भी वहां नहीं होती है, इच्छा करना वहां संभव ही नहीं। उस हालत में मंत्र आ रहा है, इसका मतलब प्रभु अवतार ले रहे हैं मंत्र रूप में जगत कल्याण के लिए, क्योंकि जानते हैं वो वक्त वो आ रहा है कि यहां गुरु मिलेगा नहीं, मिलेगा अभी तो नकली मिलेगा, लोग भटकेंगे, कौन इनका मार्गदर्शन करेगा, इसलिए वो मंत्र रूप में अवतार लेकर जगत में प्रकट हो जाता है। इसीलिए मंत्र की फिर महिमा की वाणी आई, देखिए वाणी क्या आती है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जो इसका प्रेम से स्मरण करेगा उसका अपार कल्याण होगा। अपार कल्याण जीव का केवल मोक्ष होता है, ईश्वर दर्शन होता है, और इसीलिए वो सर्व सिद्धि दाता है कि जीव को सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सब कुछ सिद्धि की पहचान यह है कि उसके अंदर कामना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, यह है सर्व सिद्धि। और फिर अंत में आया कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग मंगत तत् अक्षर नित गाइये प्रभु दर्शन होए संयोग, कि मानसिक जितने भी कलह कलेश हैं सब खत्म हो जाते हैं इस मंत्र के प्रताप से। और जो भी इसका जाप करेगा कहते हैं कि प्रभु दर्शन उसको प्राप्त होगा, ये वाणी गारंटी दे रही है। जिस प्रभु ने मंत्र प्रकट किया, मंत्र रूप में जो प्रभु ने अवतार लिया, उसी प्रभु ने वाणी रूप में भी अवतार लिया, वाणी रूप में भी वो प्रभु प्रकट हुए, और वाणी इसकी गारंटी दे रही है। इसलिए ऐसे सिद्ध मंत्र का जब कोई जीव संसारी जीव मौन होकर जाप करता है तो उसके सामने फिर ये ईश्वर प्रकट हो जाता है, क्योंकि मंत्र खुद ईश्वर रूप होता है। और इसके जाप के वक्त भी मनुष्य को यह याद रखना होता है कि मंत्र खुद ईश्वर है, क्योंकि वाणी में जगह है, देखो एक नाम गुरु करी बख्शीश पल पल सिमरे जो सो स्वरूप जगदीश। जो मंत्र होता है वो जगदीश अर्थात ईश्वर का स्वरूप होता है। इसीलिए बात कही जाती है कि सिद्ध मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र के जाप करने से वो काम नहीं हो सकता। तो वो मंत्र खुद ईश्वर होता है। इसीलिए गीता में आके यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों में जितने भी कर्मकांड बाहर का है, मैं सबसे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ हूं। तो जप यज्ञ प्रभु खुद है, और जप किया जाता है केवल मंत्र का। इसीलिए जो जीव भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की सही उपासना करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अपनी बुद्धि के निश्चय को बदले, ये सीखे कि मैं शरीर नहीं हूं और ईश्वर सदैव मेरे संग निवास कर रहा है, इस शरीर के अंदर ही मैं भी शरीर में निवास कर रहा हूं। यदि मैंने पूर्ण संत की आज्ञा का पालन किया, उनके ज्ञान को समझने की कोशिश की, उनके मंत्र का जाप किया, तो एक दिन मुझको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि बीच में शरीर छूट भी गया तब भी गारंटी है कि अगला जन्म आपको मनुष्य का ही मिलेगा, और उसमें जो यात्रा आपने इस जन्म में पूरी कर ली है वो बेकार नहीं जाएगी, वो बचपन से आपको वही हालत प्राप्त होगी। गुरुदेव ने खुद कहा था कि जब से इनकी 3 वर्ष की आयु थी इनको पूरा बोध था, ये इनके पिछले 3 जन्म की कमाई है। तो गुरुदेव ने खुद पिछले 3 जन्म में जाकर ईश्वर प्राप्ति करने में वो सफल हुए थे। तो उनके मार्ग पर चलने वाला जीव भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको सफलता जरूर मिलेगी, ये जन्म निरर्थक नहीं जाएगा, अन्यथा संसार के भोग विलास करके मौत को प्राप्त हो गए और खाली हाथ संसार जाना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाए और पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए हम उनके वचनों को समझने की कोशिश करें, उनके मंत्र को अपनाएं, ताकि ये मानव जीवन सफल हो और हमारी मानव जन्म की यात्रा पूर्ण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।